संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 29 मई 2020 के इस साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस की थीम रही महिलाओं का योगदान। दो महिलाओं को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर सम्मान, उनमें से एक भारत की मेजर सुमन गवानी से खास बातचीत। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए धनराशि जुटाने के वास्ते बना एक नया संस्थान। कोविड-19 के कारण दुनिया में 16% से ज्यादा युवाओं को रोजगार छिना। और शहरी इलाकों से गांवों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के बारे में सुनिएगा एक इंटरव्यू। इनके अलावा होंगे कुछ और समाचार भी। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN न्यूज रीडर। इस ऐप में बाईं ओर विभिन्न भाषाओं की सूची में आपको हिंदी भी नजर आएगी। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके जरिए ताज़ा समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के मौके पर कहा है कि हम अब तक संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के रूप में सेवाएं प्रदान करने वाले 10 लाख से ज्यादा पुरुषों व महिलाओं और ड्यूटी पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले 3,900 शांति रक्षकों का सम्मान करते हैं। यूएन प्रमुख ने पिछले साल अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने वाले 83 सैन्य, पुलिस और असैनिक शांति रक्षकों को मरणोपरांत डाग हामरशॉल्ड मेडल से सम्मानित किया। यूएन महासचिव के संदेश में 95,000 से अधिक उन असैनिक, पुलिस और सैन्य कर्मियों का भी आभार जताया गया जो फिलहाल अनेक देशों में तैनात हैं। यूएन प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के उन सभी शांति रक्षकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जिन्होंने वर्ष 1948 से विश्व शांति व सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस वर्ष यूएन शांति रक्षक दिवस पर शांति रक्षा अभियानों में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस वर्ष की थीम शांति रक्षा में महिलाओं की भूमिका रही और इसके जरिए यूएन मिशनों में उनकी केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया जा रहा है। यूएन प्रमुख ने बताया कि महिलाएं जिन समुदायों में सेवारत होती हैं अक्सर वहां उनकी पहुंच ज्यादा होती है और इससे आम लोगों की रक्षा करने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और मिशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। इसके बावजूद फील्ड मिशनों के सैन्य, पुलिस, न्यायिक और सुधार कर्मियों के दलों में महिलाओं को महज 6% प्रतिनिधित्व ही हासिल है। यूएन महासचिव ने वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से दो महिलाओं को भी सम्मानित किया जिनमें एक महिला शांति रक्षक भारत से और दूसरी ब्राजील से हैं। एक रिपोर्ट के साथ अंशु शर्मा।
29 मई को अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया जिसमें यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी शिरकत की। ये पहली बार है जब दो शांति रक्षकों को ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिजालियन ने यूएन सैन्य पर्यवेक्षक के तौर पर मेजर सुमन गवानी के योगदान को पहचाने जाने और पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर की है।
Congratulations, Major Suman.
मेजर सुमन को बहुत बहुत बधाई। सुरक्षा के प्रति हमारा नजरिया कायम करने में महिला शांति रक्षकों की अहम भूमिका होती है। महिला शांति रक्षक हमें सिखाती हैं कि केवल हिंसा खत्म करना ही अहम नहीं होता बल्कि समुदाय के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा भी शांति रक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना ही शांति रक्षा का मूल सिद्धांत है।
भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर रेनाटा डिजालियन के शब्द। मेजर गवानी की दक्षिण सूडान में तैनाती वर्ष 2018 में हुई थी और इस दौरान उन्होंने 230 यूएन सैन्य पर्यवेक्षकों के लिए हिंसक संघर्ष संबंधी यौन हिंसा जैसे विषयों पर परामर्शदाता के तौर पर कार्य किया। साथ ही मिशन के हर शिविर में महिला सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को सुनिश्चित किया। समर्थन, परामर्श, दिशा निर्देश और नेतृत्व प्रदान कर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए एक मददगार माहौल का निर्माण करने में सहायता की। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण सूडान के सरकारी सुरक्षा बलों को भी प्रशिक्षित किया और हिंसक संघर्ष संबंधी यौन हिंसा पर कार्य योजना जारी करने में मदद की। वहीं कमांडर कार्ला मोंटेरो दे कास्त्रो अराउजो मिनुस्क्वा के मुख्यालय में अप्रैल 2019 से लैंगिक एवं संरक्षण सलाहकार के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लैंगिक मुद्दों व संरक्षण के विभिन्न आयामों पर केंद्रित व्यापक पाठ्यक्रम तैयार किया और फिर प्रशिक्षण प्रदान किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप मिशन को लैंगिक और बाल संरक्षण के मुद्दों पर संपर्क बिंदुओं के नेटवर्क को बढ़ाने में सफलता मिली है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2016 में हुई, जिसका उद्देश्य सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1325 के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में शांति रक्षकों के समर्पण और प्रयासों को पहचान और सम्मान दिया जाता है। ये प्रस्ताव मुख्य रूप से महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसमें तीन प्रमुख बिंदुओं पर बल दिया गया है: हिंसक संघर्ष की रोकथाम, महिलाओं और उनके अधिकारों का संघर्ष के दौरान और उसके बाद संरक्षण, और संघर्ष को सुलझाने के लिए सभी प्रक्रियाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना। महासचिव गुटेरेश ने कमांडर मोंटेरा दे कास्त्रो अराउजो और मेजर गवानी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।
जैसा कि इस रिपोर्ट में आपने सुना, सम्मानित हुई दो महिला शांति रक्षकों में से एक भारतीय हैं, जिनका नाम है मेजर सुमन गवानी। उनसे खास बातचीत की अंशु शर्मा ने, सुनिए ये इंटरव्यू।
मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, इसके क्या मायने हैं?
जेंडर एडवोकेट अवार्ड उस शांति दूत को दिया जाता है, जरूरी नहीं है किसी महिला को ही दिया जाए। ये अवार्ड किसी पुरुष शांति दूत को भी मिल सकता है, किसी महिला शांति दूत को भी मिल सकता है। ये अवार्ड मिलता है सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 को अपने दिनचर्या के कामों में शामिल करने के लिए, अपने डेली की पीस कीपिंग लाइफ में शामिल करने के लिए। अब अगर मैं कहूँ कि 1325 क्या है, तो ये कहता है कि वुमेन पीस और सिक्योरिटी, इसको कैसे आज के जो कंफ्लिक्ट एरियाज हैं वहाँ पर उसको हम कैसे पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं। तो कोई भी शांति दूत अगर इन एरियाज में काम करता है या अपने डे टू डे ड्यूटीज को में जेंडर को इंटीग्रेट करता है, तो उस शांति दूत को ये अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ। मैंने अपने दिनचर्या में ये कैसे किया, पहले जब मैं टीम साइट में थी एज अ मिलिट्री ऑब्जर्वर, तो हम जॉइंट पेट्रोल्स पे जाते थे, गाँव में जाते थे, महिलाओं से मिलते थे या पुरुषों से मिलते थे या उस गाँव के लीडर्स से मिलते थे, तो हम उन्हें समझाते थे कि लड़कियों का भी स्कूल जाना बहुत जरूरी है या महिलाओं की के अधिकार क्या होते हैं, क्योंकि कोई फॉर्मल स्कूलिंग अगर उन्होंने नहीं किए तो उन्हें नहीं पता। तो हम उन्हें बताते थे कि कैसे विश्व भर में महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, विश्व भर में महिलाओं के अधिकार क्या हैं, उन्हें क्या मिलना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये हम उन्हें डेली की बातचीत में हम पेट्रोलिंग के दौरान हम बताया करते थे। दूसरा, मैं फिर कुछ समय बाद फोर्स हेडक्वार्टर में चली गई थी ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पर। तो जब मैं ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पे गई, तो जो नए मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मिशन में आते हैं, उनका ट्रेनिंग का जिम्मा मेरे ऊपर था, तो उनके ट्रेनिंग के शेड्यूल में हमने फिर एक नया जेंडर वाला, ताकि वो सब जब फील्ड में जाएं तो उन्हें पता रहे कि कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस क्या होता है, तो वो हमने उनके ट्रेनिंग के करिकुलम में ऐड किया। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फोर्सेज हैं, उनको हमने ट्रेन किया, उनके लिए हम सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, क्लासेस ऑर्गेनाइज करते थे कि कैसे वो लोग अपनी फोर्स में भी जेंडर पैरिटी, जेंडर इक्वालिटी को ला सकते हैं, कैसे वो लोग कर्व कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस को, इस सब के ऊपर हम उनके उनके लिए सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते थे। फिर मुझे सिलेक्ट किया गया था केन्या जाने के लिए, जहाँ पे मुझे पीस सपोर्ट स्कूल में कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस का एक कोर्स किया। तो उसकी वजह से, उस कोर्स करने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। मैं काफी लोगों को ये बता पाती थी कि कैसे हम अपने मिशन में कैसे फोर्स काम कर सकता है इसको रोकने के लिए,
शांति रक्षकों को, खासतौर पर महिला शांति रक्षकों को क्या कुछ खास संदेश देना चाहेंगी?
हम सबको अपने दिनचर्या के कामों में जेंडर पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट करना चाहिए। दूसरा, महिला शांति सैनिकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सब, हम किसी से कम नहीं है, वो तो पहले ही हमने प्रूव कर दिया है, अगर हम शांति मिशन में गए हैं तो हमने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है तभी हम वहां पर पहुंचे हैं। एंड मैं कहूंगी कि हमें और मजबूती से काम करना चाहिए, जहां पर भी हम काम कर रहे हैं वहां की महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागृत करने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारा वहां पे रहना सफल हो।
आपको याद दिला दें कि इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड 19 के खिलाफ देशों ने साथ मिलकर अगर अभी प्रयास नहीं किए तो ये संकट दुनिया भर में अकल्पनीय तबाही और पीड़ा का कारण बन जाएगा। यूएन प्रमुख ने टिकाऊ विकास के लिए वित्तीय पोषण पर गुरुवार को आयोजित एक वर्चुअल उच्च स्तरीय कार्यक्रम में 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तत्काल सामूहिक कार्रवाई की पुकार लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने आगाह किया है कि 1930 की आर्थिक महामंदी के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के जोखिम का सामना कर रही है। उन्होंने कहा,
Hunger and famine of historic proportions, 60 million more people pushed into extreme poverty, up to half the global workforce.
मौजूदा हालात में 6 करोड़ लोगों के चरम गरीबी के गर्त में धंसने, अभूतपूर्व अकाल का साया मंडराने, 1.5 अरब से ज्यादा लोगों की आजीविका के साधन खोने और वैश्विक उत्पादन में $8.5 trillion की कमी आने का खतरा है। इन परिस्थितियों में जवाबी कार्रवाई के केंद्र में एकता और एकजुटता को रखा जाना होगा। जिन 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तत्काल सामूहिक कार्रवाई की पुकार लगाई गई है वो इस प्रकार हैं: वैश्विक अर्थव्यवस्था में नकदी का विस्तार करना और विकास प्रक्रिया के लिए वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अरबों लोगों के जीवन और आजीविका को बचाने के लिए कर्ज के बोझ तले देशों को राहत प्रदान करना, निजी क्षेत्र के लेनदारों को सामयिक समाधानों का हिस्सा बनाने के लिए जरूरी ढांचा बनाना, समावेशी विकास और रोजगार सृजन के लिए बाहरी स्रोतों से वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना, अवैध वित्तीय लेनदेन की रोकथाम करने और घरेलू संसाधन जुटाने को बढ़ावा देना, और पुनर्बहाली की नीतियों को टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा के अनुरूप बनाना।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए धनराशि जुटाने के लक्ष्य से बुधवार को एक नए संस्थान WHO फाउंडेशन की स्थापना की गई है, जिसके जरिए गैर पारंपरिक स्रोतों से धनराशि जुटाने का इंतजाम किया जाएगा। ये संस्थान एक स्वतंत्र इकाई के रूप में दानदाताओं से मिलने वाली सहायता की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए रणनीति का अहम हिस्सा होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडेनोम गेब्रेसस ने स्पष्ट किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि 20% से भी कम बजट सदस्य देशों के लिए निर्धारित योगदानों से आता है, जबकि 80% से अधिक बजट स्वैच्छिक योगदानों से प्राप्त होता है, जो आमतौर पर विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए ही निर्धारित होता है। उनके मुताबिक यूएन एजेंसी के पास अपनी धनराशि को खर्च करने के सिलसिले में निर्णय लेने का ज्यादा अधिकार नहीं है। WHO संस्थान यूएन स्वास्थ्य एजेंसी से कानूनी रूप से अलग होगा और सार्वजनिक योगदानों, प्रमुख दानदाता हस्तियों और कॉरपोरेट साझीदारों से योगदानों को हासिल करने में मदद करेगा। ये ऐसे अनुदान संभव बनाएगा जिनसे वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने में यूएन एजेंसी के प्रयासों को सहारा मिलेगा। इनमें 1 अरब से ज्यादा लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज के दायरे में लाना शामिल है। यूएन एजेंसी के प्रमुख ने बताया कि इस संस्थान का हाल में बजट की रकम से जुड़े मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। गौरतलब है कि अप्रैल 2020 में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपने योगदान की रकम का भुगतान तब तक रोकने की बात कही थी जब तक कोविड-19 महामारी से निपटने में यूएन एजेंसी की शुरुआती कार्रवाई की समीक्षा नहीं हो जाती। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण दुनिया में 16% से ज्यादा युवाओं का रोजगार छिन गया है, और जिनके पास कामकाज है भी उनके भी कामकाजी घंटों में 23% की कटौती हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस से युवाओं पर तिहरी मार पड़ी है और उनके लिए रोजगार के साथ साथ शिक्षा व ट्रेनिंग के अवसरों पर भी संकट खड़ा हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
यूएन एजेंसी के नए अपडेट के मुताबिक इस महामारी से युवाओं पर अन्य वर्गों की तुलना में ज्यादा असर हुआ है। और पिछले कुछ महीनों में युवाओं में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं इससे अधिक प्रभावित हुई हैं। न सिर्फ उनकी आजीविका के साधन तबाह हो रहे हैं, बल्कि शिक्षा और ट्रेनिंग के अवसरों में भी व्यवधान आया है। इस चुनौती के समाधान के तहत रोजगार और ट्रेनिंग कार्यक्रमों की गारंटी होना और निम्न और मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार केंद्रित कार्यक्रमों का सुनिश्चित किया जाना जरूरी बताया गया है। यूएन एजेंसी मॉनिटर के चौथे संस्करण में उन उपायों का भी जिक्र किया गया है जिन्हें अपनाकर कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की सुरक्षित ढंग से लौटने में मदद मिल सकती है। कोविड-19 संक्रमण की टेस्टिंग और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना यानी ट्रेसिंग अहम है और इसके जरिए श्रम बाजार में आने वाले व्यवधानों को कम करना संभव है। साथ ही टेस्टिंग और ट्रेसिंग से नए रोजगारों को अस्थायी रूप से सृजित किया जा सकता है जिससे युवाओं और अन्य जरूरतमंदों को मदद मिलेगी।
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष आईफेड की भारत में संयोजक मीरा मिश्रा का कहना है कि कोविड-19 संकट के दौरान शहरों से ग्रामीण इलाकों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की मदद करने में स्थानीय सामुदायिक संगठनों के नेटवर्क ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां भी महिलाएं व किसान छोटे समूहों में संगठित थे वहां उन्हें ट्रेनिंग देना, बाजार और राहत कार्यों से जोड़ना आसान हुआ और अब इसे और व्यापक स्तर पर करने की आवश्यकता है। मीरा मिश्रा ने यूएन हिंदी न्यूज की अंशु शर्मा से एक खास बातचीत में बताया कि मौजूदा चुनौतियों ने एक बार फिर ग्रामीण स्तर पर बुनियादी ढांचों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। सुनिए ये इंटरव्यू।
जब भारत सरकार ने अभी कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा की थी तो कई प्रवासी श्रमिकों ने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। शहरों से गांवों की तरफ इस तरह पलायन से एक अलग तरह की इमरजेंसी पैदा हो गई है। फिलहाल वहां जमीनी स्थिति क्या है?
जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, इस ऐड की परियोजनाएं चल रही हैं, वहां के बारे में खासकर शुरुआत के दिनों में लॉकडाउन के बाद जब कुछ प्रवासी मजदूर गांव लौटने लगे थे तब के बारे में हम अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं। तो हमने मूल रूप से दो चीजें देखी। एक तो जैसे झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के जो सुदूर गांव थे वहां हमने पाया कि ग्रामीण लोगों ने गांव और जिले के प्रशासन तंत्र के साथ मिलकर के वापस आ रहे प्रवासी श्रमिकों के रहने, उनके खाने, उनके क्वारंटीन, इन सब का बड़ा अच्छा इंतजाम किया। तो अक्सर इन्हें रहने के लिए जैसे वहां पंचायत भवन है, कोई स्कूल की बिल्डिंग है, कुछ कभी कभी तो ट्राइबल गांव में जो मुंडा है, जो मेन लीडर है, उसके घर में भी रहने का इंतजाम किया जाता रहा और उनके परिवारों की काउंसलिंग भी की कि क्यों 14 दिन की क्वारंटीन की जरूरत है, मास्क के उपयोग के बारे में बताया। और जैसे झारखंड में तो एक हमारा परियोजना है झारखंड में ट्राइबल एरियाज में, वहां तो परियोजना की शुरुआत में लगभग 150 गाँव में इस तरह का काम किया गया जहां इस तरह की सपोर्ट वहां के जो समूह थे, जो संगठन थे, उन्होंने प्रदान किया वापस आ रहे प्रवासी मजदूर थे। दूसरा हमने ये देखा कि ये काम सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर नहीं किया गया बल्कि बाकायदे प्रोफेशनल तौर पर किया गया। तो मतलब ये कि जो स्वयं सहायता समूह है, जो फेडरेशन है, जो प्रोड्यूसर ग्रुप है या इस तरह के जो भी संगठन है, जो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इनको प्रशासन के तरफ से प्रोफेशनली इंगेज किया गया। तो इसलिए बहुत ही अच्छे और बहुत सुचारू रूप से ये हॉट कुक मील्स भी और बाकी जो उनके लिए रहने का प्रबंधन भी बहुत अच्छा कर पाए। आजकल जो स्थिति है उसमें हमें ये जानकारी मिल रही है कि इन एरियाज में प्रदेश सरकार अपने विभिन्न तंत्र के माध्यम से और जिसमें इफेक्ट के जो परियोजनाएं हैं उनके भी जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं उनके द्वारा प्रवासी मजदूरों का सर्वे करवा रहे हैं जिससे वो ये समझ सके कि इनमें से कितनी की रुचि रुकने में है, कितनी की रुचि लौटने में है, ये कौन से नए कौशल लेके आ रहे हैं। जो लोग कृषि और श्रम से जुड़ना चाहते हैं उनमें से किनको जॉब कार्ड नहीं है और उनको बनवाने में मदद भी की जा रही है। इस तरह से प्रयास तो जारी है पर जब इनकी संख्या और बढ़ती जाएगी जो कि अब आजकल पिछले कुछ दिनों में बढ़ती जा रही है तो स्थिति क्या होगी इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।